आकाशवाणी दिल्ली है। सर्वोच्च न्यायालय कल दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मस्तिष्क में होने वाली बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म की जागरूकता को लेकर सत्र का आयोजन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली सरकार के कार्यों को संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 11 रिपोर्टों पर चर्चा की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वजीरपुर में नाले में डूबने से हुई बच्चों की मौत के लिए DSIDC और दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। सर्वोच्च न्यायालय कल भारत राष्ट्र समिति BRS की नेता के कविता द्वारा दायर की गई जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। एक रिपोर्ट।
ये याचिका कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दायर की गई है। पिछले सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने के कविता की याचिका की जांच करने पर सहमति व्यक्त की और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और प्रवर्तन निदेशालय ED से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। न्यायालय ने जांच एजेंसियों का पक्ष सुने बिना कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। BRS प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछली 1 जुलाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली ने आज रक्त वाहिकाओं में कमजोरी के कारण मस्तिष्क में होने वाली बीमारी सेरेब्रल एन्यूरिज्म की जागरूकता को लेकर एक सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में अमेरिका के बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में रेडियोलॉजी के प्रोफेसर और न्यूरोसर्जन जैक्स मोटेर ने इस बीमारी के कारणों और उपचार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वोविन एंडोब्रिज तकनीक के माध्यम से सेरेब्रल एन्यूरिज्म का आसानी से इलाज किया जा सकता है। ये पुरानी विधि की तुलना में काफी आधुनिक है। उन्होंने कहा कि इस विधि से इलाज कर दर 70-80% है। सत्र के दौरान न्यूरोसर्जन जैक्स मोटरेक ने इन बीमारियों के इलाज में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान एम्स में न्यूरोसाइंस सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर एस गायकवाड़ ने भी देश में न्यूरोसाइंस के अध्ययन पर चर्चा की। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली सरकार के कार्यों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक CAG की 11 रिपोर्टों पर चर्चा करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को पत्राचार कर दिल्ली सरकार के कार्यों का लेखा जोखा सार्वजनिक करने की मांग की गई है। श्री यादव ने कहा है कि सरकार के कार्यों को सार्वजनिक करने की मांग को सरकार ने मंत्री आतिशी द्वारा खारिज करना लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक मान्यताओं का अपमान है। श्री यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल जब तक जेल नहीं गए थे तब तक वह हर मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाकर चर्चा करते थे, लेकिन CAG की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने को लेकर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वजीरपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र के एक नाले में डूबने से कल हुई एक 9 वर्ष के बच्चे की मौत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बच्चे की मौत के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम DSIDC और दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है। श्री सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा शहर में जलभराव की निकासी के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए गए हैं, जिससे इस वर्ष मॉनसून में कई अप्रत्याशित दुर्घटनाएं देखी गई हैं, जिसमें लोगों ने अपना जीवन खोया है। उन्होंने कहा कि ये खेदपूर्ण है कि दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक हर हादसे की जिम्मेदारी अधिकारियों पर डालते हैं और खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा है कि दिल्ली विद्युत बोर्ड के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के नाम पर दिल्ली सरकार शहर की जनता पर अतिरिक्त भार डालने जा रही है। श्री बिधूड़ी का कहना है कि वर्तमान में सरकार पहले ही बिजली बिलों के माध्यम से 7% टैक्स सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के नाम पर वसूल रही है और अब उन्हें कैशलेस इलाज देने के नाम पर बिजली बिलों में अन्य टैक्स जुड़ने की संभावना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विद्युत बोर्ड का निजीकरण वर्ष 2002 में किया गया था, तब विद्युत बोर्ड के सभी कर्मचारी निजी कर्मचारी में परिवर्तित हो गए थे। श्री बिधूड़ी ने कहा है कि वर्ष 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर विद्युत बोर्ड के सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन दी जाने लगी, जो अनुचित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। 15 वैश्विक दक्षिण देशों के 30 स्वास्थ्य नीति निर्माता और विशेषज्ञ आज से 4 दिन की यात्रा पर भारत आए हैं। एक रिपोर्ट।
ये यात्रा विदेश मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सहयोग से आयोजित की है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान नीति निर्माता और विशेषज्ञ अपने भारतीय समकक्षों के साथ चर्चा करेंगे, साथ ही वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय फार्माकोपिया की मान्यता, क्षमता निर्माण और गुणवत्ता नियंत्रण सहित भारतीय फार्माकोपिया आयोग के साथ सहयोग पर भी वार्तालाप करेंगे। इस यात्रा के दौरान विशेषज्ञ जन औषधि केंद्रों, दवाओं और वैक्सीन निर्माण इकाइयों तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं को देखने के लिए आगरा और हैदराबाद भी जाएंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
भारतीय जनता पार्टी ने कोलकाता में मेडिकल छात्र के कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा की मांग की है। नई दिल्ली में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि ममता बनर्जी के कृत्यों ने महिलाओं की गरिमा और कानून के शासन को समाप्त कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके बजाय वह अधिकारियों के खिलाफ मार्च निकाल रही हैं। श्री भाटिया ने इस मामले में विपक्षी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने पीड़िता को शर्मिंदा करने के लिए अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। कोलकाता में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के विरुद्ध आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टर और मेडिकल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, सफदरजंग अस्पताल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, उत्तरी रेलवे केंद्रीय अस्पताल और अन्य संस्थानों के डॉक्टर्स ने नई दिल्ली के निर्माण भवन के निकट विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले में न्याय की मांग की। प्रदर्शनकारी डॉक्टर के संस्थानों और स्वास्थ्यकर्मियों की रक्षा के लिए एक सुरक्षा अधिनियम की भी मांग कर रहे हैं। पद्म पुरस्कारों से सम्मानित 70 से अधिक डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की मांग की है। इन डॉक्टरों ने कहा है कि क्रूरता की ऐसी घटनाएं चिकित्सा क्षेत्र की सेवाओं को प्रभावित करती है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। डॉक्टरों ने प्रधानमंत्री से इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने का भी आग्रह किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राजभवन में स्कूली छात्रों के साथ त्यौहार मनाया। इस दौरान छात्रों ने उपराज्यपाल को राखियां बांधी। उपराज्यपाल ने सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं दिल्ली सरकार ने मंत्री आतिशी ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राखी बांधी। इस अवसर पर उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राखी एक अटूट बंधन है और एक धागा रिश्तों को बांधे रखता है। रक्षाबंधन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भाइयों और बहनों के बीच अनूठे संबंध का उत्सव है, जो प्यार और आपसी विश्वास की भावनाओं को मजबूत करता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि त्योहार भाइयों और बहनों के बीच पवित्र बंधन का उत्सव है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी खुशहाली और समृद्धि की कामना की है। उत्तर रेलवे ने बताया है कि नई दिल्ली से आगरा छावनी के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी संख्या 14212 और 14211 के परिचालन में अस्थायी तौर पर बदलाव किए गए हैं। ये रेलगाड़ी आज से गुरुवार तक केवल ग्वालियर तक ही चलेगी। उत्तर प्रदेश में मेरठ और गाजियाबाद के बीच नमो भारत रेल सेवा शुरू हो गई है। इसे रैपिड ट्रेन भी कहा जाता है। कल इस ट्रेन ने मेरठ से साहिबाबाद 42 किलोमीटर की दूरी महज 32 मिनट में तय कर ली। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड रेल प्रणाली में साहिबाबाद से मेरठ के बीच 9 स्टेशन हैं। नमो भारत रेल सेवा सुबह 6 से रात 10 बजे तक उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पीके मिश्रा की अध्यक्षता में कल एक बैठक हुई, जिसमें देश में मंकीपॉक्स से निपटने की तैयारियों तथा जन स्वास्थ्य उपायों की स्थिति की समीक्षा की गई। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंकीपॉक्स की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं। प्रधान सचिव ने राज्यों से इस बीमारी का तत्काल पता लगाने के प्रभावी उपाय करने और इसकी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस काम के लिए प्रयोगशालाओं का नेटवर्क बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। देश में फिलहाल मंकीपॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा से मुलाकात की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार, संपर्क और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र सहित बहुआयामी द्विपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली निर्यात करेगा। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत की पड़ोसी फर्स्ट नीति और लोगों के बीच अद्वितीय सांस्कृतिक जुड़ाव संबंधों को आगे बढ़ाता है। नेपाली विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये यात्रा दोनों पड़ोसी देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान की परंपरा के अनुरूप है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम आज से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की यह पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि श्री इब्राहिम कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंध हैं। मंत्रालय ने कहा कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया था। प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की यात्रा भविष्य के लिए बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक एजेंडा तैयार करके भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में आज हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय कल दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता की कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने मस्तिष्क में होने वाली बीमारी सेरेब्रल एनीरिज्म की जागरूकता को लेकर सत्र का आयोजन किया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर दिल्ली सरकार के कार्यों से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 11 रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने वजीरपुर में नाले में डूबने से हुए बच्चे की मौत के लिए DSIDC और दिल्ली नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आज रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।